सभी को गुड मॉर्निंग है। और इस चौथे दिन के सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल जॉन एकल्स की बात की थी हमने, साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा ब्रेन रिसर्च ही अल्टीमेट प्रॉब्लम है, यानी कि मस्तिष्क का अनुसंधान मनुष्य के सामने आने वाली बहुत बड़ी समस्या है। एक और पहलू, बहुत ही सुंदर कोट है फिलोसोफर्स से, और ये कहते हैं हर सत्य इन तीन स्टेजेस के थ्रू पास करता है, और ये आ रहा है शास्त्रवाद शोपेनहावर से, जो कहते हैं कि सत्य पहले सब उसका हास्य उड़ाते हैं, दूसरी बार में उसका विरोध करते हैं, और तीसरी बार में उसको स्वीकारते हैं। तो कल हमने कॉन्शियसनेस कैसे चलती है, हमारी चेतना, हमने वो देखा साइंस को लेकर। तो इस वक्त जो स्टेज चल रही है तो वो शायद हास्यजनक स्टेज चल रही है, लेकिन जरूर ये स्वीकारा जाएगा बाद में। कल हमने कैमल और एलिफेंट का ड्रामा भी समझा, ऊंट और हाथी का, कि कैसे हम इसमें भ्रमित हो सकते हैं और डूब सकते हैं और बिल्कुल अपने रोल में खो सकते हैं, और ये कितनी बेतुकी बात है खुद को अगर ऊंट और हाथी समझना जबकि हम कोई और हैं। और जो होमवर्क था वो ये था कि 100% पारस बुद्धि से क्या अनुभव होता है, तो आप अपने अनुभव जो हैं चैट पर डाल सकते हैं। हम इस वक्त वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का, जो आगे का सत्र चालू रखेंगे, और सभी को वो हेलो और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और इतना फटाफट से जो आपने समरी दी है उसके लिए धन्यवाद। हम सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं केवल इतना ही, और तर्क इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं बड़ा नक्शा। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमने वो डॉग यानी कुत्ते की कहानी भी सुनी, और जो बिल्ली के पीछे भागता है और फंस जाता है वो अपना बड़ा नक्शा भूल जाता है, उसकी लाइफ कैट बन जाती है, और उसको वो शायद सक्सेस लगे लेकिन ये सक्सेस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिडिक्यूलस यानी हास्यजनक होता है, और यही हम पर भी लागू होता है। प्लेटो एक शास्त्रवाद है जो कहते हैं कि हम उस स्थिति पर हैं कि हमें ये भी नहीं पता है कि हमें नहीं पता है। और हम सब जो है इस कैट फ्लैप को क्रॉस कर चुके हैं और हमें ये भी नहीं पता है हमने क्या खो दिया है। तो हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, लेकिन जो सार है वो साफ है, हमारे को उस स्तर पर लेकर आना है कि हमारे को हुआ क्या है आखिर। ये किसी ने कहा है, हम इस वक्त सामूहिक गड़बड़ में हैं और ये बाहर का नहीं है, ये बहुत भीतर का है, सूक्ष्म है। आज आप देखेंगे कि पूरे संसार में किसी को भी नहीं पता है कि वो इस कैट फ्लैप को क्रॉस कर चुके हैं और हर कोई उस बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं और उनकी उन्नति का जो संकल्प है, जो सोच है, वो भी यही है कि फिर से एक कैट फ्लैप पे क्रॉस करें या एक बिल्ली के पीछे भागें। कहने का तात्पर्य है कि सब ही डूब रहे हैं इस दुनिया में। हम बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और थोड़े देर अटेंशन से सुनेंगे ये कमेंट्री और उसके अनुभव में आएंगे। अदृश्य यात्री समझता है कि वो बहुत बहुत भाग्यवान है, लकी है। उसकी दुनिया ही अलग दुनिया है, अलौकिक है और वो बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। जो अदृश्य यात्री है वो अपनी शाश्वत दुनिया को जानता है। उसके लिए ये नॉर्मल बात है अपने आप को एक छोटा सा सूक्ष्म बिंदु समझना, क्योंकि वो है ही बिंदु। उसके लिए ये बहुत नॉर्मल बात है कि वो उस आसमान का है, उस सुप्रीम आसमान का। उसके लिए ये आम बात है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है कहानी से। कहानी अलग है, उसकी दुनिया अलग है। ये नॉर्मल है उसके लिए ये जानना कि वो अदृश्य ट्रैवलर्स की दुनिया को बिलोंग करता है। उसे पता है कहानी बिल्कुल ही हार्मलेस है, उसे जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। कोई भी कहानी क्षति नहीं पहुंचा सकती, पर ये भी एक कहानी है और उसकी दुनिया हर क्षति से परे है। वो जानता है कि सारी सोल की फैमिलीज हैं और सभी के सभी क्षति से बिल्कुल परे हैं, जरा भी उन्हें क्षति नहीं पहुंच सकती। उसकी जीवन खुशी की है, टॉय की है। जब किसी को ये समझ आता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है उसके अस्तित्व के लिए और वो इमॉर्टल है, यानी मृत्यु से परे है और क्षति से भी परे है, तो एक साइलेंट खुशी रहती है, यानी भीतर की वो खुशी रहती है, मौन की वो खुशी रहती है। और जैसे हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं इस खूबसूरत सत्य के बारे में। और ये सत्य है अदृश्य यात्री का और ये सभी का सत्य है। धन्यवाद। तो हम अभी ये बोर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये स्केच आपको मालूम होगा हम शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको फिर से याद दिलाते हैं, इस स्केच को जो ड्राइंग आप इस वक्त बोर्ड पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नीला बॉक्स दिख रहा है ये कहानी है, और हम इस कहानी में आते हैं और हम यहां से वापस जाते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर ये ब्लू कलर की लाइन से हम यहां से पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं कहानी से। और ये पारस दृष्टिकोण है। जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हम ये बड़ा नक्शा देखते हैं, हमें अपनी दुनिया नजर आती है दिव्य बुद्धि से। हम अपना घर देखते हैं, हमें स्थूल दुनिया को भी देख पाते हैं, हम समझ रहे हैं बुद्धि से। जब हम पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हम ड्रामा और कहानी के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। हम कहानी में हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि हम कहानी में हैं। हम अपने आप को उल्टा लटका समझते हैं, यानी पता भी नहीं है कि हम यहाँ कहानी में एक्टिंग कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मन जो है एक ग्लास के दूध के जैसा है, और अगर उसमें जरा भी एक बूंद भी विष की नहीं है, पॉइजन की नहीं है, तो आप पूरा दूध ले सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एक बूंद भी विष की हो तो वो बिल्कुल भी सेवन करने लायक नहीं होता। तो अगर हमारे मन में जरा भी फियर नहीं है, डर नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो हमें वो मन मिलता है जहां खुशी है। और ये जो स्थिति है ये हर आत्मा की स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। हम सभी बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, ये हमारी नेचुरल स्टेट है। लेकिन जब एक बूंद भी अगर विष की आ जाती है, पॉइजन की जाती है, तो हमें वो सुख शांति की महसूसता नहीं होती। तो जो सुख और शांति है वो दुनिया में जो आपको केक मिलता है या दुनिया में जो वैभव मिलता है उसके आधार पर नहीं है, लेकिन ये भीतर का सुख जिसको हम अतींद्रिय सुख कहते हैं। जो हम कहते हैं सकारात्मक दुनिया, ये सबसे अच्छा टाइटल है इस दुनिया के लिए। लेकिन जब हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं जो हमने पीछे भी बात की थी, जिसे हम कहते हैं अज्ञानता की रेखा, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, तभी वो विष की बूंद मन में आ जाती है। कहानी बुरी चीज नहीं है, कहानी तो गिफ्ट है, लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से हमारे को दुख मिलता है और हम खुद ही उसको प्रॉब्लम बना लेते हैं। और सभी के सभी सामाजिक सामूहिक तरीके से उसमें फंस जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है हम अपने सत्य में फिर से वापस आए और फिर जो चीज जैसे है उसको सही तरीके से देखें। अगर ये ड्रामा है तो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखें। उसके लिए है पारस बुद्धि। और पारस बुद्धि से हमारे को सही तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये नए आइडियाज हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सुनेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होता जाएगा। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। किसी ने कहा कि क्या ये खेल है, तो जवाब है कि हाँ ये खेल है। हम सभी अदृश्य खिलाड़ी हैं और जैसे हम और पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हमें और सूक्ष्मता से समझ आएगी, हमारी जो बुद्धि और उसको समझ सकेगी। प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का एक घर होता है और उनका एक खेल का मैदान होता है, लेकिन अगर वो खेल ये लाइन क्रॉस कर जाएंगे तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और ये जो खेल है वो युद्ध स्थल बन जाता है। लाइन के पीछे आते हैं तो हमें समझ आता है हमारे पास घर है और एक खेल है खेलने के लिए जो पॉजिटिव है हमेशा। तो ये ऊंची चेतना की बुद्धि है। जब हम खेल को खेल और घर को घर समझते हैं, तो हम आज के सब्जेक्ट विषय में आते हैं और आज हम बात करेंगे ईगो की, यानी देह अभिमान जिसको ईगो भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारी जीवन को रूल कर रही है, राज्य कर रही है हमारे जीवन में। दूसरे का देह अभिमान नहीं, हमारा खुद का अहंकार वो रूल कर रहा है। हम इसे अहंकार समझ सकते हैं, ईगो कह सकते हैं या देह का अभिमान। तो इस लाइन के नीचे ड्रामा चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, पैसा है और आप बता सकते हैं और क्या क्या है, आप टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, अमेजिंग दुनिया है। और कौन इस दुनिया से पास कर रहा है, वो अदृश्य यात्री पास कर रहा है, यहां से गुजर रहा है। और ये भ्रमित हो रहा है इस दुनिया में, हर दिन थोड़ा और भ्रमित हो रहा है। आप देख रहे हैं ये नीले रंग का सर्पिल जो नीचे की ओर जा रहा है, हर दिन वो अपनी कनेक्शन जो है अपने सत्य से कम करता जा रहा है, हर दिन वो और भ्रमित हो रहा है। जो परे की दुनिया है वो है अलौकिक दुनिया और ये अलौकिक का मतलब हम कह सकते हैं अनअर्थली, यानी कि जो बिल्कुल भी स्थूल दुनिया समान ना हो। वो अभी इस कहानी में है, स्टोरी वर्ल्ड में है, और हर चीज में वो मैं और मेरा लगा रहा है टाइटल, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, ये सब कुछ नॉर्मल करार दिया जाता है। ये समाज का ये नॉर्म है हर चीज में मैं और मेरा लगाना। और फिर जब और वो भ्रमित होने लगता है तो वो एक और स्तर पार कर जाता है, और वो जो है बंधन, उसको हम कहते हैं पहचान। वो पहचान बनाना शुरू कर देता है इन सब चीजों से। हम इसको थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। हम यहाँ झूठी पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, तो जिन्होंने जॉन लेनन को शूट किया था, मार्क चैपमन जो है वो व्यक्ति जॉन लेनन को बहुत पसंद करते थे, उनके पोस्टर्स थे, और जॉन लेनन जो है वो संगीतकार थे। और एक समय ऐसा आया वो खुद को जॉन लेनन समझने, यानी ये व्यक्ति मार्क चैपमैन खुद को जॉन लेनन समझने लगे। इसको हम कहते हैं पहचान, झूठी पहचान। आप खुद को वो समझने लगते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो मनुष्य आत्माओं में है, और ये बहुत ही असाधारण है, सही नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझने लगते हैं। वो किसी और को जॉन लेनन नहीं पसंद करते थे, वो खुद को ही जॉन लेनन समझते थे। एक और उदाहरण देते हैं कि एक उनका फ्रेंड जो स्टेज पर परफॉर्म करता था, वो कहते हैं कि जो रोल है वो उन पर प्रभाव डालने लगा, उनका रोल, और वो खुद को वो रोल समझने लगे। मान लीजिए अगर कोई जेम्स बॉन्ड का रोल कर रहा है, वो खुद को ही जेम्स बॉन्ड समझने लगा, तो ये भ्रमित होना है। तो इस केस में वो अपने आप को रोल समझने लगा, तो डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि आप एक्टिंग करना बंद कर दीजिए। तो चलिए अब हम हमारा एक खुद का एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप भी रिलेट कर पाए। ये जहां बैठे हैं यहाँ पर एक पौधा है, और तो वो पौधे को पानी देते हैं। जब कोई प्रशंसा करता है तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है ये प्लांट अच्छा नहीं है तो उनको बुरा लगता है। उन्होंने ब्रदर प्रशांत के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको बुरा लगा, केवल पौधे के बारे में कहा। तो क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? कोई किसी चीज की बुराई करे और आपको बुरा लग जाए। उन्होंने पौधे के बारे में कहा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? तो कॉन्शियस में आपको पता है कि वो प्लांट है, मैं अलग हूं, लेकिन हमारे जो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, हम ये सोचने लगते हैं कि वो पौधा कहीं ना कहीं मुझसे रिलेटेड है, यानी मैंने कहीं ना कहीं उससे पहचान बना रखी है, या फिर वो मेरा पौधा है। सो अवचेतन मन में मुझे बुरा लगता है। क्योंकि मैंने यहां पहचान बना ली है पौधे के आधार पर। तो आज कोई पौधे की प्रशंसा करता है तो मुझे लगता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, और अगर कोई बुराई करता है तो मुझे लगता है कि मेरी बुराई हो रही है। वो इतना मुझे व्यक्तिगत रूप में प्रभावित करता है क्योंकि मैंने वहां पहचान बना ली है। क्या हम ऐसा करते हैं? आप बता सकते हैं चैट पर, कोई एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, आपके व्यक्तिगत कोई एग्जाम्पल हो तो आप बता सकते हैं चैट पर। क्या आप ऐसे कहीं पहचान बना रही हैं? क्या कहेंगे आप? कुछ जवाब आए हैं माँ और बच्चों के बीच। तो कोई भी हो सकता है, वाइफ के साथ आइडेंटिफिकेशन, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आपके घर के साथ, आपकी गाड़ी के साथ, चीजों के साथ। तो आप हर चीज व्यक्तिगत तौर पे ले रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सारी पहचान आपने बना ली है, आपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ पहचान बनाई है। तो चलिए हम वापस आते हैं, जो हमने पहचान बनाई है पौधे के ऊपर। तो कोई बुरा बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, प्लांट को बुरा बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास बड़ा प्लांट है, बड़ा पौधा है, तब भी मुझे दुख मिलता है, क्योंकि ये फिर जलसी यानी ईर्ष्यावश हो जाता है मन। और वो अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है, तो भी हमें बुरा लगता है कि क्यों वो प्रशंसा नहीं कर रहा है। तो ये पहचान बड़ी कंफ्यूजन वाली पहचान है। तो ये अज्ञानतावश ये पहचान बनी है, और जो उसका परिणाम होता है वो केवल दुख होता है। और ये जो आई है यानी मैंपन है जो हमारे जीवन में है, ये जितनी भी हमारे जीवन में जो गड़बड़ हुई है या जो हलचल है वो केवल इस मैंपन की वजह से है। जहां जहां हमने ये पहचान बनाई है, मैंपन रखा है, वहां दुख है। मान लीजिए कि कोई आपके घर मेहमान आए हैं और आपने खाना बनाया है, तो अगर कोई कहे कि कोई और ये फूड बनाता है तो वो ज्यादा अच्छा है, तो आपको बुरा लग जाता है। तो अगर इस कहानी से आपको दुख मिलता है तो माना आप बंधन में है। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ पहचान बना रखी है जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त होता है। या फिर आपने ऐसी कोई अपनी इमेज बनाई है, चित्र बनाया है कि मैं हमेशा ठीक कार्य करती हूं, तो अगर थोड़ा भी कोई बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। तो क्या जरूरत है इस मैपन की? इस मैं को आखिर चाहिए क्या? इस मैपन का लक्ष्य क्या है आखिर? क्या कहेंगे आप? तो किसी ने जवाब दिया है कि स्वीकृति, प्रेम चाहिए इस मैपन को, अहंकार को संतुष्टता चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये जो मैपन है ये सब कुछ आधारित है इस स्थूल दुनिया पर। हमने देखा कि ये स्थूल दुनिया ही अप्रत्याशित है और ये सब कुछ अंत को आने वाला है, तो ये सब भी जाने वाला है, यानी कि ये जो भी मैपन है वो जाएगा ही जाएगा। तो ये असुरक्षा की फीलिंग लेकर आता है ये मैपन। तो ये मैपन जो है वो एक पीड़ित मानसिकता लेकर आता है, यानी हमेशा हमें ये फीलिंग आती है कि कोई कुछ कहना दे, कोई कुछ करना दे, और यही डर दिमाग के पीछे रहता है इस मैपन की वजह से। तो जो ये पीड़ित मानसिकता है उसे हमेशा हर जगह डेंजर नजर आएगा, यानी घबराहट नजर आएगी। और ये जो मानसिकता है ये भिक्षुक की मानसिकता है कि मुझे बड़ी टोपी चाहिए, मुझे मान शान चाहिए। जो अदृश्य यात्री है उसकी दुनिया सुख और प्रेम की है, वो एक प्रिंस है और अब यहाँ पर वो झूठी पहचान बनाकर मांगने की वृत्ति में आ गया है। जिसे हम कहेंगे कि ये एक दास की मानसिकता भी है, अधीनता है, दास यानी अधीनता है हर चीज की। सोल जो कि मास्टर है, लेकिन अब वो यहाँ कहानी में लाइन क्रॉस करके अधीन हो जाता है, अधीन हो जाता है, पीड़ित फील करता है और भिक्षु की मानसिकता हो जाती है, मांगने की वृत्ति। आप देखेंगे किसी भी समाज में भिखारी जो होता है उसकी सबसे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम स्तर होता है उसका। और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई उसका देवान यानी अहंकार तोड़ दे। उसका रिएक्शन एक भिखारी की तरह होता है। तो जब हम ये ईगो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके कई अर्थ होते हैं, यानी ईगो शरीर के ऊपर हो सकता है, रिलेशन के ऊपर हो सकता है, दे जो अहंकार है वो जॉब के ऊपर हो सकता है, आपके आइडियाज के ऊपर हो सकता है, ये सब कुछ ईगो है। आपने जो अपना चित्र बना रखा है, आपने जो इमेज बनाई है उसके आधार पे ईगो हो सकता है। जो आपका अहंकार है वो आपके कुत्ते पर भी हो सकता है कि मेरे पास अच्छे ब्रीड का डॉग है या मेरे पास सबसे अच्छे जूते हैं। तो हम इस वक्त इस स्थिति में आ गए हैं, गिरावट की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा जो स्वाभिमान है वो हमारे कुत्ते के आधार पर भी हो सकता है। अगर कोई उसको प्रेज करे तो वो हम खुश होते हैं, अगर उसकी बुराई करे तो हम अपने आप की निंदा समझते हैं। तो ये झूठी पहचान हमारे मन और दिमाग को रूल कर रही है, राज्य कर रही है। तो किसी के पास कोई देह अभिमान है क्या? आप बता सकते हैं? तो कुछ प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं इस वक्त। अगर आपका फ्रेंड कैमल की तरह पार्ट बजा रहा है और आप हाथी का रोल कर रहे हैं, तो ये पूरा ड्रामा जो है ये एक तोहफा है। कैमल का अपना पार्ट है, आपका अपना पार्ट है, ड्रैगन का अपना पार्ट है, तो ये डिटेल्स का ये पार्ट है। अब ये पूरा ड्रामा ही एक तोहफा है। तो कोई तो अगर सिंड्रेला के ड्रामा में कोई जो अगली सिस्टर का रोल करता है तो कोई तो प्ले करेगा ना, तो ये सब रोल है। तो ड्रामा में शुरुआत होती है और अंत भी होता है, पर ये सब कुछ एक तोहफा है। तो ये सवाल आया है कि कैसे हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल को हील कर सकता है, यानी ठीक कर सकता है। तो मान लीजिए कि कई बार हम टेलीविजन में भी देखते हैं कि जब कई बार एक कैमरे के थ्रू एक मजाक की तरह कुछ कॉमेडी बनाई जाती है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई है, किसी को दिखाया जाता है और फिर बाद में बताया जाता है ये जोक था। तो वो भी हंसता है उस पर। तो यहां पर भी ऐसे ही है। तो जब हमारी समझ पूरी नहीं होती तो हमारे को वो एक सदमा जैसे लगती है, बुरा लगता है, क्योंकि हमारी समझ पूरी नहीं है। लेकिन जब हमें पूरी समझ आ जाती है तो तब हमें वही परिस्थिति हास्यजनक लगती है। तो ये सब कुछ ड्रामा में हुआ, ये सब कुछ एक थिएटर है जिसका एक बिगिनिंग है और अंत है। हर कोई यहां पर सेफ है। जब आपके पास पारस बुद्धि है तो आपको समझ आता है ये सब कुछ सेफ है। तो तभी आप पास्ट देख सकते हैं अलग एटीट्यूड के साथ। तो हमारे को पारस बुद्धि से देखना होगा तो जो अदृश्य यात्री है वो कभी भी पीड़ित नहीं होता है, कभी भी भिक्षुक नहीं फील करता है। तो हम ये बात अंडरलाइन करना चाहेंगे कि जब हम पारस इस्तेमाल करते हैं और जब अदृश्य यात्री ये देख रहा है ग्रैंड परफॉर्मेंस, तो अदृश्य यात्री को समझ आता है कि वो कभी भी पीड़ित नहीं है। बहुत कुछ इस कहानी में होता है, युद्ध लड़ाई, लेकिन वो कभी भी पीड़ित नहीं है और भिक्षुक भी नहीं है। वो अमर है और उसके अस्तित्व के लिए किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। जो खाना है वो शरीर को दिया जाता है, उसको खुद के अस्तित्व के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये जागृति, अगर आप कुछ देर भी रहें, इस जागृति में रहें, तो ये भी बहुत बड़ा काम करती है हमारे लिए। तो किसी का ये सवाल है कि हमारा जो अचीवमेंट है उसको भी आप अहंकार कहेंगे, ईगो कहेंगे? तो जवाब है कि अगर आप अचीवमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं वो मैटर करता है। आपकी सफलता को आप कैसे देख रहे हैं, ये अदृश्य यात्री देख रहा है या फिर ईगो देख रहा है? अचीव करना, सफलता गलत नहीं है, हम इस खेल में हैं। लेकिन ये सफलता हमारे भीतर मन के अंदर ना घुस जाए, इसका ख्याल रखना है। क्या अपने देशभक्ति को भी आप ईगो कहेंगे? तो आध्यात्मिकता के आधार पर अगर आप देशभक्ति देखें तो वो भी लिमिटेड है, हद की है। तो हर कोई किसी न किसी देश को बिलोंग करता है, वहां का होता है। पर अगर मैं ये कहने लगूं ये मेरा है और वो दूसरे का, दूसरा देश है, तो ये थोड़ा हद का हो जाता है। तो अगर हम इस बड़े नक्शे को अच्छे से समझें कि हमारी दुनिया परे है और ये हम सबका सत्य है और वही हमारी हमारा देश है, अलौकिक दुनिया वो है हमारा देश। कहानी में कैमल होता है, किसी देश का होता है, पर वो देशभक्ति नहीं करता है। फिर क्या हम देहाभिमान को सकारात्मक तरीके से कभी सोच सकते हैं? तो ये सवाल है, उसका जवाब है कि अगर सत्य के आधार पर आप अपनी पहचान बनाएंगे तो वही सही तरीके से सोचना होगा। आप अगर कहानी के आधार पर कोई भी पहचान बनाएंगे तो वो तो सुख नहीं देगा। तो झूठी पहचान में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। तो आप देखेंगे जो दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वो झूठी पहचान की वजह से होते हैं। तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सैड, मैड और बैड, ये सब कुछ झूठी पहचान की वजह से है। यानी दुख, बुरा और पागलपन, ये सब कुछ मैपन की वजह से है, ईगो की वजह से। तो किसी ने सवाल किया है कि जो नकारात्मक लोग होते हैं उसको आप कैसे गिफ्ट कहेंगे। तो ड्रामा में कोई विलन का पार्ट प्ले करता है, कोई हीरो का करता है। तो अगर ड्रामा से अगर विलेन को हटा दिया जाए तो आपको ड्रामा नहीं मिलेगा। तो ये केवल एक मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। तो ड्रामा में क्या आप बिना अगली सिस्टर के रह सकते हैं? तो जवाब है कि एक बार अगर हम ड्रामा में हैं तो हमको ये पूरा ही ड्रामा सही तरीके से देखना है। तो सच्चाई है कि ड्रामा की अपनी ही स्क्रिप्ट होती है, लेख होता है। तो हम किसी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसी स्क्रिप्ट में जो आता है हमें उसे सही तरीके से देखना है। तो ड्रामा में कुछ बुरा नहीं होता है, हम किस तरीके से लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा घर भी अच्छा है और ड्रामा भी अच्छा है। तो क्या सब कुछ भ्रम है, आप ऐसा कहेंगे? ये सवाल है। तो जैसे कि असली जीवन में भी हमें ऐसा दिखता है कि किसी के पास फैमिली होती है, किसी के पास घर होता है, सब कुछ होता है, और फिर उनके पास एक थिएटर भी होता है जहां पर वो जाते हैं फिल्म देखने या ड्रामा देखने। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये लेकिन अलग स्तर पर है कि हमारा एक घर है, एक फैमिली है और एक हमारा सच्चा स्वरूप है, और फिर ये थिएटर है जहां पर हम खेलने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा थिएटर है ये, जहां वैरायटी है परफॉर्मेंस की, और फिर हम घर वापस चले जाते हैं। हमारे को कुछ भी एक भ्रम की तरह नहीं देखना है। घर घर है और थिएटर थिएटर है। जो चीज हमारे को गड़बड़ लगती है वो यही कि हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं और तब ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो तब आप थिएटर को थिएटर की तरह नहीं देखते हैं। तो लाइन क्रॉस होने के बाद थिएटर को हम थिएटर नहीं देखते हैं, सब कुछ सीरियस हो जाता है। फिर ईगो आता है, अटैचमेंट आता है, फिर लगाव, दुख आता है। तो आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो हम दुख को अवॉइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे को दुख मिले, हम खुद ही उसको लेकर आते हैं। तो कैसे हम हमेशा पारस बुद्धि में रह सकते हैं? उसका जवाब है, हमारे को एक कदम उठाना होता है 1 मिनट से, 1 सेकंड से। तो चाहे आप 1 मिनट ही करें, पर वो 1 मिनट क्वालिटी का हो, मिक्स्ड ना हो। उन क्षणों के दौरान
पूरी कहानी से आजादी की महसूसता होती है। क्या हम कुछ समय तक ड्रैगन बने हुए रह सकते हैं, या क्या उसे नुकसान पहुंचता है? क्या यह जानना जरूरी है? जब हम लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं हमारी चेतना उच्चतम होते हैं, और जैसे कि हमने देखा, जब हम उस उच्चतम चेतना में रहते हैं तब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हम ईगो के बिना रहते हैं, हम ना पीड़ित हैं और ना भिखारी हैं। ये जैसे हम ऊपरी तौर पर सुरक्षित नहीं महसूस करते, हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को जब सुरक्षित महसूस करते हैं उस मानसिकता में। किसी ने कहा कि हमें प्यार करना है इसलिए हम प्यार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें सबकी महानता दिखाई देती है, सबकी एकदम प्योर भावनाएं होती है दूसरों की तरफ, जो आत्मा की असला स्वरूप है, असली स्वरूप। हम सबको अच्छे से अच्छा ही देना चाहते हैं। दिल ही है जो प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, ऊपरी तौर पर नहीं। इसलिए हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे इस स्थिति में। कभी हम भाषा यूज करते हैं अहिंसक की, डबल अहिंसक की, तब उस उच्चतम चेतना में जो हम महसूस करते हैं उस वहां पे कोई दुख नहीं होता और किसी को भी दुख नहीं देते हैं उस स्थिति में। हाँ, वो ड्रैगन का रोल जरूर प्ले करता है, लेकिन अगर उसे पता चले कि ड्रैगन का रोल प्ले करने के बाद किसी को दुख मिलेगा तो वो कभी भी दुख नहीं देना चाहेगा। जैसे अगर मैं कोई खिलौना फेंक देता हूँ, लेकिन कोई बच्चे को वो टूटा हुआ खिलौना, जैसे मुझे कोई टूटा हुआ खिलौना मैं फेंकता हूँ, लेकिन वो टूटा हुआ खिलौने से अगर उन्हें नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं दूंगा वो, क्योंकि वो उन्हें दुख देगा। मेरे लिए उस खिलौने का कोई काम नहीं है, लेकिन हम समझदार हैं, ये समझ है कि उस टूटे हुए खिलौने से दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। जो दिल और दिमाग से महान होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर हमारा कोई महानता का, प्यार का, दिल के प्यार का फायदा उठाने लगे तो वो जो इस स्थिति में होता है वो चाहेगा कि दूसरे उसका फायदा उठाए। उसे पता है कि उसे कुछ नुकसान पहुंच नहीं सकता, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो अंदर ही अंदर वो चाहता है कि दूसरे उसका फायदा ले। बट एक अलग लेवल पर वो, उन्हें ये पता चले कि वो भी अमर है, वो भी महान है, वो भी अच्छे हैं, तो वो इस तरह से अगर दूसरे उनका फायदा उठाए तो उसको बहुत ही ज्यादा खुशी ही होगी। लेकिन अगर ईगो उनका फायदा ले तो किसी को कोई कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर दूसरे के ईगो की बढ़ोतरी होती है, उनको नुकसान पहुंचाते हुए, तो आप वो चीज को देख पा रहे हो। जैसे आप कोई किसी बच्चे को देखते कि वो खिलाना तोड़ रहा है हथौड़ी से, या कोई टेबल तोड़ना चाहते हैं हथौड़ी से, तो आप ये रोक सकते हो, आप उनके हाथ से हथौड़ी ले सकते हो। लेकिन अगर वो ऐसे ही घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से आपको लगता है कि कोई चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है तो आप उसे रोक सकते हैं। कोई दूसरों का अगर नुकसान पहुंचाते हैं जब स्टेज पे है, तो क्या उन्हें हमें डांटना चाहिए? हाँ, ये सेम ही आंसर था इस चीज का, कि कोई अगर स्टेज पे गलत करता है तो उनके रोकने में कोई गलत बात नहीं है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मगर ईगो होना गलत बात है, ये कैसे? ये अगला प्रश्न है। तो घर में तो शरीर भी नहीं होता, तो जॉय की महसूसता कैसे होती है, आनंद की महसूसता कैसे होता है? जब हम सारी नेगेटिव चीजें जो होती है वो तभी आती है जब हम लाइन को क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा भी दुख दर्द होता है वो वहीं से आता है जब हम लाइन क्रॉस कर देते हैं। अगर हमें उस आनंद की महसूसता अभी करनी है तो कर ही लेनी चाहिए। किसी ने कुछ साइकोलॉजिकल प्रश्न पूछा है कि यूनिवर्सिटीज में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है उसका आधार ये है कि जो ये जिंदगी है ये जिंदगी ही सब कुछ है, और वो लोग अब पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो जो कुछ भी आप सब कुछ खाली एक ही जिंदगी में नहीं होता, जन्म जन्म की यात्रा है, एक ही जन्म में सब कुछ नहीं होता, बहुत समय से हम इस यात्रा पर हैं और हमने बहुत सारी अपनी गलत आइडेंटिटीज और अटैचमेंट्स बना लिए हैं, गलत पहचान बना ली है, और ये भी एक स्टेज है, एक ही हम भी अभी भी उसी यात्रा के एक पड़ाव पर हैं। और जो फिलॉसफी होती है वो कहती है कि बचपन जो होता है, बचपन होता है उसमें हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जन्मों से उस आत्मा की पर्सनालिटी बनती जा रही है। तो हमारा जो ये मॉडल है स्पिरिचुअल मॉडल, ये बिल्कुल अलग है। तो कैसे पता चल सकता है कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ से इस ड्रामा से डिटैच हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ये ड्रामा ही सच का लगता है। मैं जानता हूँ कई बच्चों को जो 6 साल के 8 साल के हैं जो इस बात को समझते हैं कि वो आत्मा है, और मैं उनको भी जानता हूँ जो 80 साल के हैं और फिर भी उनको ये बात समझ नहीं आती कि वो आत्मा है। कोई हो सकता है समझ ले और फिर भूल जाए, कई है जो उसको रख भी सकते हैं, एक है समझना, लेकिन बात है यहाँ से बाहर निकलने की, और वो तब होता है, तभी हमारी सचमुच में हमारा परिवर्तन होता है। अगर मैं अपने मन का एक चित्र लेता, फोटो लेता, तो हम एक ऐसा चित्र देखते हमारे ही मन का, जहाँ बहुत सारी गलत पहचान होती, जिसको हम छोटी आई के रूप में दिखाए रहे, शरीर के आधार पर, जॉब के आधार पर, एज के आधार पर, कुत्ते के आधार पर, सबके आधार पर एक छोटी छोटी आई ये बनी हुई है। और जैसे जैसे ये छोटी आइडेंटिटीज के बीच में एक छोटी सी है हमारी जो सच्ची आइडेंटिटी है, जो बड़े आई में के रूप में दिखाई देती है, जो अदृश्य यात्री है, वो आइडेंटिटी भी इस मन के अंदर है, अगर वो छोटी सी है। एक समय ऐसा था जब हम इसी स्थिति में रहते, जब हम पूरी तरह इस सच्ची आई में टिके हुए थे। आप मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जैसे जैसे हमने इस छोटी आई को हमने बढ़ोतरी दी, जैसे जैसे हमने इनको खिलाया पिलाया, तो मानो ये बढ़ती गई और हमने अपनी बड़ी आई को खो दिया, कहीं ना कहीं इसको छोटा कर दिया। और ये बीज तो हर एक आत्मा के अंदर है ही है, बस अभी हम जो कर रहे हैं कि हम कुछ सेकंड निकालें, कुछ मिनट निकालें, तब हम ये सच्ची सच्ची आत्म अभिमानी स्थिति को उभारे। और जितना जितना हम इस बड़ी आई को बढ़ाते जाएंगे, उतनी उतनी ये छोटी आई अपने आप खत्म होती जाएगी। यही जीत है। और हर मिनट जो हम बिताते हैं पारस बुद्धि के साथ, अपने समय को सफल कर रहे हैं और अपने आप के अंदर ये डीप परिवर्तन ला रहे हैं, ये जरूरी है। एक है समझ, और एक हो सकता है कोई स्कॉलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, बट उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा। लेकिन जो अंदर जो परिवर्तन होगा, एक इस जन्म से दूसरे जन्म में वो ही जाएगा, जो वो परिवर्तन हो चुका है, जो संस्कार बन चुका है, उसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला है। तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए इस छोटे आई को खत्म करने में और इस बड़े आई को उभारने में। किसी और को कोई प्रश्न है? ये चित्र तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हमने बहुत सारे छोटे आई बनाए हुए हैं ड्रामा के आधार पर, और ये स्पिरिचुअल मॉडल जो हमने देखा है, जो बड़े आई वाला, ये हमारा सच्चा सच्चा स्वरूप है। क्या आप और कुछ समझाना चाहते हैं इस माय के बारे में, कैसे हमें बड़े आई को बढ़ाना चाहिए, छोटे आई को खत्म करते रहना होगा? जैसे हमने देखा हमारे पुराने डिस्कशंस में भी, कि एक अदृश्य यात्री जो है वो अदृश्य यात्री इस खेल से गुजर रहा है और कैमल और एलिफेंट का रोल प्ले कर रहा है, और जब वो इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करता है तो ये कैमल और एलिफेंट उस पे हावी हो जाते हैं। बस यही वहां गड़बड़ हो जाती है और वो भूल जाता है कि वो अदृश्य यात्री है। इसीलिए ये छोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ही ये देखने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन लेकिन हर कोई इस अज्ञानता में फंसा हुआ है। यही हमारा आध्यात्मिक मॉडल है, कि जैसे गवर्नमेंट होती है, कोई चीज ठीक ठीक करना चाहती है, दुनिया को ठीक करना चाहती है, लेकिन जो आध्यात्मिक मॉडल है वो ये कहता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके बाकी चीजें अपने आप ठीक होगी, नहीं तो नहीं। और हमें ये बड़ा कदम उठाना होगा पारस का इस्तेमाल करने का, क्योंकि पारस हमें मजा, पारस हमें दिखाता है अपनी सच्चाई को, दिखाता है कि आखिर हम है कौन। तो जिन जिन क्षणों में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये पारस बहुत स्ट्रांग होता जाता है। अपने सच्चे सच्चे परिवार को हम देखते हैं, हम देखते हैं कि हर कोई सुरक्षित ही तो है। अपनी वो भिखारी वाली मानसिकता को खत्म करते जाते हैं, जहां हम मांग ही रहे हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और जब तक ये जो पीड़ित की मानसिकता हमारे अंदर है, दास्यपन है, तब तक हम इस दुनिया को बहुत बड़े तौर पर नहीं बदल पाएंगे। जैसे ये एक बीमारी है हमारे अंदर, लेकिन जब हम वो अदृश्य खिलाड़ी हैं, जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, तो हम देख पाते हैं कि हर कोई महान है, हर कोई अच्छे हैं, हर कोई सुरक्षित है, तब वो एक खेल ही अलग हो जाता है। और और वही इस चित्र से हम देख रहे हैं, जहाँ हर कोई आत्म अभिमानी है, जहाँ और जो ये बड़ा आई दिख रहा है, हाँ वो ड्रामा में है, वो घर पे नहीं है, वो ड्रामा में ही है, लेकिन जैसे वो एक्टिंग कर रहा है कैमल की, वो कभी भी भूलता नहीं है कि वो अदृश्य यात्रा है, और वो उसे कैमल से कोई कनेक्शन नहीं फील होता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर अगर छोटे आई ही, जो ये छोटे छोटे आई को बढ़ाते रहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे कैमल हो, हम अपने आप को उस कैमल की मानसिकता में फंसा लेते हैं। अभी तो हम हंस सकते हैं, बट अभी हम अपने आप को वही बना रखे हैं। तो ये जो सच्चा ये ज्ञान ही है जो हमें दिखाता है कि, और हम अपनी रिवर्स जर्नी पे चल चुके हैं और इस सुंदर खेल को खेलते हैं, और ये सब ठीक सिर्फ प्रेयर से ठीक नहीं हो सकता, हमें समय निकालना होगा और इसे सही तरीके से करना होगा। सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर कुछ करे तो वो काफी नहीं होता है। खाली सोल के बारे में पढ़ना और जानना ही काफी नहीं है, उसको महसूस करना, उसके दृष्टिकोण को देखना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब समय हो गया है ब्रेकआउट रूम्स का। क्या हम ब्रेकआउट रूम में ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे आई किस किस तरह के होते हैं? और हम कैसे पहचाने कि वो हमारी गलत आइडेंटिफिकेशन है? सबका मेन रूम में फिर से स्वागत है, और अपने आप से कनेक्ट करने के लिए तो 1 मिनट तक हम साइलेंस का अभ्यास करते हैं, इस चित्र को देखते हुए, अपने घर को और इस ड्रामा को राइट पर्सपेक्टिव से देखते हुए। आज सबका अच्छा रहा ब्रेकआउट रूम्स में, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अच्छे डिस्कशंस रहे। और अब हम स्वागत करते हैं संजय भाई का, जो इसराइल से हैं, जो राजयोग की पढ़ाई वहाँ करते हैं, और उनसे हम अब सुनेंगे। संजय भाई इसराइल से, सबको गुड आफ्टरनून कह रहे हैं और थैंक्स कह रहे हैं इस इनविटेशन के लिए, और उनका ब्रेकआउट रूम भी बहुत अच्छा रहा, वो भी हमारे साथ ही है आज। और एक बार संजय को कहा गया कि तो कैसे बात हुई ब्रेकआउट में, जो उनके ईगो को टच हुए कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूँ, उसे अच्छा जानता हूँ, फिर भी मुझे ऐसे कहा गया। तो सीधा ईगो को टच होता है। लेकिन लेकिन 25 साल से मैं इस यात्रा पर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने जाना कि ये ईगो था। जहां ईगो होता है वहां एक जाग होता है, क्योंकि मुझे चिंता हो सकती है, मुझे अपने आप पे कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे अपने आप पे तरस आ सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ईगो कहीं खो न जाए। तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ पिछले हफ्ते, तो मेरा जो मैनेजर है जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ के मैनेजर ने मुझे बुलाया एंड उसने कहा, हम सोच रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, निकालना चाहते हैं। उसे बहुत बुरा लगा। आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, कोई आपको झूठ बोल रहा है, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सबको इतना अच्छे से बात करता हूँ, तो आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो आपको नहीं पसंद करते हैं और हमें नहीं पता कि हमें आपके साथ क्या करना चाहिए। उसके बाद, इस वार्तालाप के बाद मैं घर गया और मैं सोच रहा था कि क्या हुआ आखिर। तब मुझे मदद मिली इस ज्ञान से, मुझे मैंने उस पूरे वाक्य, उस जो इंसिडेंट हुआ, उस पूरे वाक्य को एक गिफ्ट के रूप में लिया, जो इस ड्रामा में मुझे मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। मुझे कोई बात कोई उत्तर नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। जब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो मेरा रवैया कैसा रहता है, एटीट्यूड कैसा रहता है? और मैंने समझा पाया वो मुझे नौकरी में रखे ना रखे, ना रखे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद, इस वाक्य के बाद मैं उससे ज्यादा फ्रेंडली बन गया, उससे प्यार से रहने लगा और सही एटीट्यूड को अपनाया। तो मैंने अपने अंदर के ईगो को समाप्त किया इस तरीके से। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहा आपका ये इंसिडेंट। तो जो आपने कहा आध्यात्मिक ईगो भी जो डेवलप होता है उसके बारे में आपने बताया। एक स्पेन से एक भाई थे जिनका भी, जो उनका बॉस थे, उन्होंने भी उनका बहुत ही अनादर किया। तो उन्होंने कहा, मैंने भी अपने आप ये प्रैक्टिस किया, और जो महान आत्मा के रूप में दूसरे को देखा, आत्मा के रूप में देखा, बहुत महीने गुजर गए। तो जो बॉस था वो भी मेडिटेशन करने लग गया इसी दौरान, और उनका रवैया भी उनकी तरफ बदल गया। हो सकता है कि आपके मैनेजर का रवैया आपके प्रति ऐसा ही हो और आपका कोई दोष न हो। हाँ, क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। चाहे जो भी आप करो या चाहे आप जो कुछ भी कहो, हर एक का एक दृष्टिकोण अलग होता है। जो आपकी तरफ देख रहा है उसका दृष्टिकोण हमेशा अलग ही हो। हमें जब अगर ये पता चलता है कि हम ही वो दुनिया बनाते हैं जो हम देख रहे हैं, हम जिस तरह से दुनिया को देखना चाहते हैं वही उसी तरह से देखते हैं। हो सकता है संजय स्वीट है, फ्रेंडली है और निर्दोष भी है, लेकिन अगर दूसरे का दृष्टिकोण जो चाहता है वो वही देखेगा, और लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने मैंने और समझा कि किसी कैसे मैं अपने कली को और खुश रखूं, और कैसे सुरक्षित उन्हें महसूस कराऊंगी, कैसे मदद करूं, तो कैसे मैं इस माहौल को बनाने में मदद करूं। तो जो भी सिचुएशंस आते हैं तो ईगो को हमें देखना है, ये नहीं देखना है कि वो परिस्थिति आई क्यों है, कैसे आई है और उसका दृष्टिकोण गलत है, ये सब हमें बिल्कुल नहीं देखना है। ये देखना है हमारे अंदर क्या गलत है, हमारे अंदर कौन सा ईगो एक्टिवेटेड है, कौन से गलत आइडेंटिटी हमारी जग गई है और एक्टिव है। सब बहुत मदद कर रहे हैं सारे उदाहरण, और अभी कुछ समय है और कुछ प्रश्न है, तो फिर से हम प्रशांत भाई की ओर चलेंगे। एक मिनट और बताएंगे इस अटेंशन में। और देखेंगे कि ये सारी जो ये मीटिंग हो रही है ये भी इस कहानी में ही हो रही है, जैसे ऊंट हाथी की कहानी है। हाँ, हम इस कहानी से सीख रहे हैं, बट है आखिर में ये भी एक कहानी। और हम उस अदृश्य यात्री की दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही रोमांचक दुनिया है, हर पहलू से रोमांचक है, अभूतपूर्व है ये दुनिया, ये सच की दुनिया है, सच्चाई की दुनिया है। हम अपने सत्य स्वरूप को महसूस कर सकते हैं इस दुनिया में। इसका ये मतलब है कि तब तक हम अपने बारे में कुछ गलत समझ रखा था, हमने सोचा कि हम स्टोरी के वो किरदार हैं। कितना समय हमने बर्बाद किया ऐसी जिंदगी में, या हमने जाना है यहीं से हम कौन हैं। वह दृश्य यात्री वो जानता है सच्चे परिवार को, कोई समरत्व की दुनिया को जानता है, वो जानता है कि हर कोई महान है। हर कोई बहुत प्यारा है, हर कोई बहुत लकी है। ये सिर्फ हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर रहे या कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ये हमारा सत्य स्वरूप है, सच्चा सच्ची पहचान है। वो सब कुछ सही तौर से देख रहा है, सही पर्सपेक्टिव से देख रहा है। जब वो अपने आप को, इस दुनिया को सही दृष्टिकोण से देख रहा है, तब वो मदद करता है दूसरों को भी इस ड्रामा से बाहर निकलने में, दूसरों को भी मदद करता है उनके सत्य स्वरूप को पहचानने में। और जैसे जैसे हम इस यात्रा पर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं उस अदृश्य यात्री की खूबसूरत दुनिया। तो आज का सारा सेशन हमारा पहचान पे था। हम उस सब्जेक्ट को सिर्फ टच कर रहे हैं, इसमें बहुत गहराई है। यहाँ का सबसे जरूरी पार्ट है होमवर्क, और ये होमवर्क 1 मिनट के लिए नहीं है, ये बहुत समय के लिए है कि हम देखें, पहचानें अपने अंदर जो गलत है। जब तक हम उनको देख नहीं पाएंगे, तब तक हम उनसे आजाद नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम अपनी गलत पहचान बनाते हैं अपने जॉब के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में, तो ऐसे हम देखें जैसे भी हम कहीं भी हम थोड़ा सा दुख की महसूसता करते हैं, कोई डर की महसूसता करते हैं, उदासी की महसूसता करते हैं, वहां पर कोई ना कोई ईगो छुपा हुआ पड़ा है, और वो गलत आइडेंटिटी है हमारी। और हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं, और जब हमें कुछ गलत होता है, जब हम दुखी होते हैं, तो हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पे हम उस ईगो से ही फ्री होना चाहते हैं। और कोई भी जो सिचुएशन आती है, वो हम देखें कि कहाँ गलत है, अगर हम अपने अंदर कोई ना कोई गलत है, जब हम कोई गलत पहचान को देख पाते हैं, तो हम उससे कम से कम 50% तक आजाद हो सकते हैं। हो सकते हैं कोई होता है, कोई व्यक्ति गुस्सा होता है बार 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 बार, और जब वो देख पा रहा था कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है, कौन से ईगो के कारण, तो वो उस गुस्से से आजाद हो गया। कितना जरूरी है ये देखना। जैसे हमने उसको देख लिया, माना उस पे हमने रोशनी डाल दी और उस ईगो को खत्म कर दिया, हमारी जो जीत है वो इस प्रकाश के समान है। उस प्रकाश से जब हम प्रकाश डालते हैं उस फॉल्स आइडेंटिटी पे, तो वो खत्म हो जाती है। और जो जितनी फॉल्स आइडेंटिटी को हम मिटाते हैं धीरे 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 धीरे, तो उसमें हमारी जीत बढ़ती जाती है। मगर अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसका हम अनुभव अगर नहीं कर सकते इस गलत पहचान के कारण, गलत ईगो के कारण, तो हरे अगर हमने एक ईगो को भी हटाया मिटाया, तो वो आत्मा के लिए एक हल्कापन है, वो आजादी है। वो आजाद हो जाते हैं। इसी को हम प्योरिफिकेशन कहते हैं, पवित्र कहते हैं। आत्मा पवित्र बन जाती है जब वो ईगो से मुक्त होती रहती है। और कोई क्वेश्चन है तो मैं लेना चाहूंगा। पांच प्रश्न है। अगर हम पारस से भी देख रहे हैं, अगर हम पारस से भी देखते हैं, क्या हमें फीलिंग बदलना चाहिए? जैसे कोई हमारा कोई क्लोज रिश्तेदार शरीर छोड़ देता है, तो हमें कैसे फील करना चाहिए? पारस का मतलब है कि आप जगे हुए हो, जो ये अदृश्य यात्री है, ये जगा हुआ है, उसे अपने सच्चे परिवार के बारे में पता है, सच्चे घर के बारे में पता है, उसे दिखाई दे रहा है कि हर कोई सुरक्षित है, हर कोई अच्छा है, कुछ नहीं बदलता। कहानी में तो सब कुछ बदलता ही रहता है, हर एपिसोड समाप्त होता है और कोई तो मरता भी नहीं है। कैमल आता है, कैमल जाता है, ड्रैगन आता है, ड्रैगन जाता है, तो कहानी में होता रहता है। तो हम फ्री हो जाते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से, और सिर्फ तो हमारा प्यार रहता है उस आत्मा के प्रति, उसके रिस्पेक्ट रहता है उस आत्मा के प्रति, लेकिन दुख नहीं होता। और वो भी दूसरों के लिए फायदेजनक ही है। हमारा जो दुख है वो किसी को मदद नहीं करता। कोई जो जिंदा है या किसकी मृत्यु हो गई है, किसी को भी मदद नहीं कर सकता, और हमें अपने आप को भी मदद नहीं करता वो चीज दुख। तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, पॉजिटिव परिवर्तन है दृष्टिकोण में। इस डॉटेड लाइन के नीचे रहते रहते तो ये अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण अपनाना थोड़ा मुश्किल रहता लगता है। तो इसको जल्दी कर, क्या हम कोई जल्दी कोई चीज कर सकते, जल्दी से बाहर निकल सकते हैं? हमें ये करना ही है, ये अगर हमारा विचारधारा है तो आसान हो जाएगा। बस करते रहो, हमारे अनुभव जो होते हैं दिन भर दिनचर्या के, तो ये हमें मदद करते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम एक और लेवल ऊपर आते जाते हैं। आप कुछ और समझते हो, कुछ और जानते हो जो हमें मदद करता है अपने आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास और मौके मिलते जाएंगे। ये यही डायरेक्शन सही है। तो ये जो हमारी पर्सनल प्रैक्टिस होगी और चीजें जो हम एक नई तरीके से अब समझ रहे हैं, वो हमारी मदद करेगा। ये जो हमारी आदतें पुरानी ही नहीं, लेकिन परिवार की भी कई आदतें आ जाती है, सोसाइटी की भी आदतें अपने अंदर महसूस करते हैं, तो सारा हम मिक्स हो जाता है। तो ये क्या सारा कुछ अंदर मिक्स हो रहा है? हाँ, 100% हमारी खुद की यात्रा है। जो हैबिट्स मैंने आज बनाई है वो मेरे साथ रहेंगे। जो परिवार होते हैं वो नहीं, वो कुछ चीजें हमें समझा सकते हैं, लेकिन मैं उनको समझू किस तरह से, वो मुझ पर है। मैं दूसरों से सीखता हूँ, लेकिन यात्रा मेरी खुद की है, आत्मा की खुद की है। क्या हमें दूर रहना चाहिए लड़कियों के परिस्थितियों से जो लाइन्स के नीचे हैं, जैसे संजय भाई की कहानी है। जैसे अगर मैनेजर गलत है तो क्या हमें दूसरा जॉब ले लेना चाहिए? ये पूरी दुनिया ही लाइन के नीचे है तो आप कहाँ भी नहीं जा पाएंगे, ये आज की सिचुएशन है। अभी बस शक्तिशाली बनना है, रहना है, और हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी है कि वो भी इस ट्रैप से निकल सके, लाइन से ऊपर आ सके। हम इस दुनिया को शक्ति स्वरूप से इस दुनिया को देखते हैं, ना कि हम उनके जैसे बन जाते हैं। कोई भी परिस्थिति जो आती है, हम कैसे और शक्तिशाली बन सकते हैं, यही देखना है। चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबसे किसी ने कहा जो अच्छी चीजें करते हैं उनकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जो जो ईगो के लिए काम करते हैं वो हमेशा खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो पार्टी कर रहे हैं और जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने ईगो को खत्म करना चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत परिस्थिति आते रहते हैं। ये सच नहीं है। हाँ, हो सकता है बाहरी रूप से कोई पार्टी हो रही हो, लेकिन लेकिन अगर आप ईगो से आजाद होते जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर हम उस भिखारी से मुक्त होते जाते, जो हमारे अंदर हो, जो हम अपने आप को विक्टिम न समझे, जो दास्यपन से मुक्त होते जा रहे हैं, हम अपने आप को पाएंगे कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, खुशी बढ़ती जाएगी। लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति है जो ईगो को फिट करता जा रहा है, वो और ही असुरों को पैदा करता जा रहा है, और ही दुख में बढ़ते जा रहे हैं उसके। उसको बाहरी तौर पे वो क्रिसमस मना रहा है, केक खा रहा है, लेकिन अंदर और अंदरूनी वो बहुत ही दुखी होगा जरूर से। लेकिन जब जैसे जैसे अंदर अंदर सफाई होती है, तो हमें बाहरी दुनिया में भी हमारी जीत होती है। तो अंदरूनी सफाई से न सिर्फ खुशी बढ़ती है, बल्कि हमारी बाहरी ही दुनिया में भी से बहुत कुछ हमें मिलता है। तो हमें बहुत ये ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं, समय भी पूरा हो रहा है। तो क्या आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे कृष्ण भाई? ये होमवर्क लंबे समय का है, ये देखना जो जो परिस्थितियां आ रही है लाइफ में सामने, उनके अंदर देखिए कि क्या गलत पहचान मुझे तकलीफ दे रही है, और आप पाएंगे और आप देख पाएंगे और आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले अब उस दृष्टिकोण में जाकर टेके जो एक अदृश्य यात्री की है, तो कल मिलते हैं इस ड्रामा के बाहर, हायर अप द स्पाइरल। तो इस वर्कशॉप का हमें बहुत फायदा होगा और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेगी। वो चैट में भी डाल दिया गया है। ओम शांति।